नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वायलेंस से आपका दोस्त योगेश। आज पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। एक महान शासकों में से एक और मुगलों के नाक में दम करने वाले महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको लेकर जितने भी इतिहास के पन्ने पलटे जाए उतने ही अधिक लोगों को प्रेरणाएं मिलती हैं। वे एक महान कूटनीतिज्ञ, चातुर्य और गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से महान शख्सियत थे। शिवाजी एक हिंदू समर्पित धार्मिक सहिष्णु भी थे और शिवाजी महाराज की आज जयंती है। और इन्हीं जयंती पर आज हमारे साथ में एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मोबाइल में स्वागत सर आपका।
जी, नमस्कार सर। नमस्कार
सर, शिवाजी महाराज एक योग्य शासक कैसे बने सर?
उनकी योग्यता के निर्धारण में जो संस्कार है, माता जी जो थी उनकी, वो उनकी नैतिक गुरु थे। दूसरे साथ साथ समर्थ जो रामदास थे उनके वो आध्यात्मिक गुरु थे। इन दोनों के मिश्रण के साथ साथ एक योद्धा की भूमिका भी, जो उनके नैतिक मतलब सैनिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, इन सब का योगदान है। और खास करके उनकी जो माता जी थी, उनका नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनको योद्धा बनाने, क्योंकि उनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, वो उनके साथ नहीं रहा करते थे। उनके पिताजी की दो पत्नियां थी, तो वो ज्यादातर समय अपनी माता के संपर्क में रहे और उनके बनाने में उनकी माता का जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान।
सर, हिंद स्वराज की स्थापना करने में शिवाजी महाराज को क्या क्या समस्या आई सर?
देखिए, हिंद स्वराज का जो उनका जो दृष्टिकोण था उसमें एक व्यापक दृष्टिकोण था जैसे, लेकिन जो सबसे बड़ी कठिनाई थी जब दक्षिण भारत में औरंगजेब ने जो प्रयास किया, क्योंकि समुद्रगुप्त, फिर उसके पहले समुद्रगुप्त के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अकबर ने भी 1601 में प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक प्रयास औरंगजेब ने भी किया मतलब दक्षिण में करने का, लेकिन शिवाजी महाराज जी ने हिंद स्वराज का जो संकल्प लिया था, क्योंकि उनके सामने की सबसे बड़ी कठिनाई थी कि हिंद स्वराज को सुरक्षित रखना, उसको संरक्षण देना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी कूटनीतिक स्तर पे, और आपको शायद जानकारी होगी शिवाजी जो है वीर योद्धा तो थे ही, लेकिन वीर योद्धा के साथ साथ एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे वो, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रतिभावान जो थे, जैसे तानाजी मालसुरी हो गया और फरजान जो थे सूबेदार, उनका बहुत अच्छा उपयोग करके अपनी जो चुनौतियां थी उसका बहुत अच्छा समाधान निकाला उन्होंने।
सर, क्या हिंदवी स्वराज में उनकी राजनीति हो, उनकी आर्थिक शक्ति हो, और जो भी उनके राज्य में जो भी जनताएं थी वो अपने आप को कुशल मानती थी सर, तो इसमें एक शासक की क्या भूमिका थी सर?
देखिए, इतिहास के पन्नों को यदि हम लोग पढ़े तो यदि हम लोगों का भी इतिहास देखते हैं, जैसे शेरशाह सूरी है या फिर अकबर है, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने मतलब एक अच्छे प्रशासक का निर्माण किया। अपन हम लोग उसमें न जाए कि वो मुगलों का इतिहास ही है, यदि योग्य प्रशासनिक व्यवस्था को देखे तो उस तरह का ये सब का मतलब, जो शेरशाह सूरी जो था उसके बाद हुई है सब लोग, अकबर और शिवाजी महाराज, लेकिन आप देखेंगे कि शिवाजी महाराज का जो दृष्टिकोण था सबका साथ सबका विकास, हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो दृष्टिकोण उस समय दिखता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से किसानों के हितों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो बीच की जो जमींदारी और सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म करके सीधा किसानों के साथ संपर्क किया था उन्होंने, ये जो उनकी प्रणाली थी ये बहुत अच्छी प्रणाली थी। दूसरा, आपको शायद जानकारी होगी, सबसे ज्यादा मुस्लिम अधिकारी बड़े बड़े पदों पे उनके समय थे, ये बहुत कम लोगों के साथ जानकारी होगी कि शिवाजी भले ही हिंद स्वराज के संस्थापक या स्थापना के लिए प्रणेता के रूप में जाने जाते, लेकिन उन्होंने जो प्रतिभावान जो उनके अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनका जिस तरीके से उपयोग लेके अपने स्वराज की स्थापना में जो भूमिका अदा की वो बहुत बड़ी बात है।
जी सर, सर मेरा पहला अगला सवाल यही था कि क्या एक शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोधी थे क्या? तो आपने पहले ही बता दिया सर, तो क्या एक
नहीं, वो विरोधी नहीं थे। मैं तो कहता हूँ कि भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे शासक हुए हैं कि सबको लेकर चलने की, उनकी जो सहिष्णुता की नीति थी। आज आप जाइए उधर अहमदनगर में, महाराष्ट्र में, हम लोग बच्चों को क्लास बच्चों को लेकर जाते हैं, जब शिवाजी महाराज का जब वो देखते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ का जो सही में जो व्यक्ति है, जो सही में हिंद स्वराज को समझता है, वो उनको पूजनीय मानता है। इसमें कोई जात पात का वो बात नहीं। और इस चीज को मतलब वो ये भी कह सकते कि उन्होंने उस चीज को समाप्त करने की भी कोशिश की। ये अलग बात है कि औरंगजेब ने हिंदुत्व को नष्ट करके मुस्लिम प्रथा को स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें संभाजी को काफी क्षति भी हुई और उसको रोकने का प्रयास भी हुआ पहले शिवाजी की। इसलिए राजा जो राजस्थान के जो शासक थे उनके माध्यम से शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के किले में रखा, लेकिन उनकी चतुराई बहुत काम आई और वो वहां से बच के आ गए। लेकिन अफजल खान ने जिस तरीके से उनको मिलने के लिए बुलाया और अपनी कूटनीति मतलब उसमें कहेंगे कि दूषित भावना से होकर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाघ नखे के माध्यम से अफजल खान को प्रतापगढ़ में उन्होंने मतलब समाप्त कर दिया था। तो ये उनकी चतुराई भी है, कूटनीति भी है और एक शासक के अंदर जो गुण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात थी जब वो युद्ध अभियान करते थे तो वो सभी सैनिकों के लिए एक निवेदन हुआ करता था कि भाई चाहे कुरान मिले या कोई धार्मिक ग्रंथ मिले या कोई स्त्री ऐसा, उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होना चाहिए। कुरान यदि मिलता है तो आपको युद्ध अभियान के दौरान उसको ससम्मान संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, ये उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सर उनको एक गुरिल्ला युद्ध के गुरिल्ला युद्ध पद्धति का स्थापक भी कहा जाता है सर। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से कई उन्होंने युद्ध लड़े और जीते भी, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिले?
नहीं देखिए, जिस हिसाब से उनके पिताजी जो थे मतलब एक बहुत बड़े शासक वर्ग में शामिल थे, तो उन्होंने वो जो देखा है। क्योंकि देखिए बाबर जब भारत आया था 1526 में, इब्राहिम लोदी को जिस हिसाब से उसने परास्त किया था, तो उसने तुलगोमा और तोपखाने का प्रयोग किया था और मतलब वो जानकार भी थे, उन्होंने सारी पद्धति, क्योंकि जिसमें छापामार पद्धति एकदम अचानक अटैक करके छुप जाना, ये जो पद्धति थी वो युद्ध पद्धति किसी और शासक की नहीं थी, वो सिर्फ शिवाजी की थी। और उनकी जो घोरपड़ थी जिसके माध्यम से बड़े बड़े किलों पे वो चढ़ जाया करते थे, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। और सबसे बड़ी भूमिका साहब उनके जो विश्वसनीय जो पात्र लोग थे, तानाजी मालसरे या फिर फरजान जो थे और भी बहुत लोग थे, ये मतलब बाकी शासक उनका भाव शिवाजी के प्रति जो था मतलब मर मिटने के लिए तैयार होते थे। तो वो युद्ध पद्धति का सफलता का कारण उनके अधीनस्थ भी थे और उनकी वो तकनीकी युद्ध नीति थी जिसकी वजह से वो सफल भी रहे। बहुत सारे किलों में चढ़ाई की उन्होंने, जीते भी। और सबसे पहले तो उन्होंने बहुत कम उम्र में तोरना का किला सबसे पहले जीत लिया था।
सर क्या आज के युवा को इतिहास के जितने भी पन्ने पलटेंगे शिवाजी महाराज के, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है? सर तो शिवाजी महाराज के आज का इतिहास बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने में कम आ रहा है, सर इसका क्या कारण है?
एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो इतिहास जिस ढंग से रचा गया है, क्योंकि आपको शायद पता होगा औद्योगिक क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत को अपने अधीन किया और अधीन किया तो उनको यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करना था, तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को जाना समझा और उसका इतिहास लिखा और उस आधार पे यहाँ शासन किया। तो हमारे, क्योंकि आप देखना ईसा पूर्व और ईस्वी जो लिखा जाता था, ईसा मसीह को उस तिथि का आधार बनाया जाता है, तो इसमें चीजों को उजागर किया गया, इसमें या फिर बाद के इतिहासकारों ने जो लिखा गया, तो उसमें जैसे जो शासन व्यवस्था के अंग रहे, जैसे जो पार्टियां, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पार्टियां रही है, उन्होंने उस इतिहास को ऊपर या पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में रुचि नहीं रखी, मुझे ऐसा लगता है। जबकि महाराष्ट्र में हम लोग शायद एक बार टूर में गए थे तो कुछ बच्चे आए थे महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनकी मैडम जब हम लोग घुष्णेश्वर मंदिर में रुक, वहाँ वो बता रही थी, वो श्री भोसले जी ने इनका निर्माण किया था, तो वहाँ के स्थानीय स्तर पे ये है, शिवाजी तो है लेकिन वो केवल एक क्षेत्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर कर आए ना, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसको राष्ट्र तक, जबकि विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने और समझने की कोशिश की। शिवाजी एक वीर योद्धा के साथ साथ बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है, ये बात अब उन लोग को जानने लग गई है। दूसरी चीज है कि जहां तक आपने कहा कि युवाओं को, सबसे बड़ी बात है साहब कि फोटो से कुछ नहीं होता, शिवाजी को खाली अक्षत कुकू लगाने से नहीं होता, जयंती मनाने से नहीं होता, वो तो ठीक है आप मना रहे, लेकिन हमने उनको पढ़ा कितना, उनको जाना कितना, वो जानकर उनको पहुंचाया कितना, क्योंकि पढ़ने में नहीं आ रहा ना, जब वो पढ़ने में आएगा तो लोगों में रुचि जागृत होगी, तो अपने आप जब समाज का दबाव बढ़ेगा तो अपने आप वो इतिहास विषय बन सकता है, और है वो, क्योंकि मुगलों के अंतर्गत जब शिवाजी को पढ़ते हैं।
जी सर, लेकिन इसी साथ ही मेरा यह भी सवाल है कि कई देशों में इसका जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसकी कमी देखी जा रही, कैसा क्यों सर?
तो उसका उसकी बड़ी यही वजह है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है,
जी
या एक षड्यंत्र के अंतर्गत भी हो सकता है कि उन नेतृत्व को उभरने न दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इतिहास को लिखा गया, एक व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी अपन इसको न कहें, अपन ये कहें कि अभी शिवाजी के इतिहास को सामने लाने का प्रयास हो रहा है, सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करी, लोग जान रहे, समझ रहे उनके कहानियों को, उनकी प्रेरणास्पद स्थितियों को और उनके जो घटनाक्रम है उनको जान रहे, अब वो स्थिति नहीं रही, अब वो इतिहास बन रहा, खुद लोग जानने समझने लग गए, वो किताबों के माध्यम से पाठ्यक्रम में भले ही ना हो, लेकिन सोशल मीडिया इतनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं कि आज शिवाजी को लेकर। हाँ, लेकिन तथ्यात्मक अभी देखिए मैं पढ़ रहा था कि गूगल पे 1630 उनका जन्म दिखाया जा रहा है, जबकि 1627 में उनका जन्म हुआ है, क्योंकि 19 फरवरी 1627 में, तो ये जो तथ्यात्मक जो त्रुटियां होती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग को ये एग्जाम में एमपीपीएससी में भी ये सवाल आया था, तो 1627 के आधार पे हम लोग परीक्षा दी और पास भी हुए थे, लेकिन आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि शिवाजी का जन्म, तो सबने उत्तर लिख के भेजा 1630। ये जो तथ्यात्मक त्रुटि है ये थोड़ी दूर हो जाए तो, और लोग पढ़ रहे सर अब, मतलब वो बात नहीं रही, अब कुछ जानने लग गए लोग शिवाजी। हाँ, लेकिन युवा शक्ति में शिवाजी को केवल नाचने गाने तक न रखे, केवल मुझे ऐसा लगता है जयंती को केवल उन्होंने नाचने गाने तक रखा, उनको पढ़ना होगा साहब, उनको समझना होगा उनके युद्ध पद्धति को, उनके राजनीतिक व्यवस्था को, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, समाज के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत अच्छा दृष्टिकोण था।
सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस शिवाजी जयंती पर?
अब मैं ये कहूंगा कि शिवाजी को केवल डांस तक सीमित न रखे, केवल जयंती तक सीमित न रखे, उनके सिद्धांतों को पढ़े, उनकी व्यवस्था को समझे, क्योंकि बहुत अच्छी शक्ति, क्योंकि शिवाजी महाराज का एक घटनाक्रम मुझे याद है कि वो भेष बदल के अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए कहीं निकले थे, एक जंगल में उनको प्यास लगी थी, एक बूढ़ी मतलब महिला की कुटिया में गए, तो वो बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा रोटी खा लो, तो उसको नहीं पता था कि शिवाजी से ये, तो उन्होंने रोटी में से, रोटी का जो भाग होता है गोल भाग, तो उसमें से आधे में से मतलब बीच से तोड़ा, तो उन्होंने एकदम झट से बोल दिया, बोले शिवाजी ऐसी गलती करता है, इसलिए बोले पहले अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहिए और फिर आंतरिक किलो को जीतना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है साहब, इससे एक मैसेज भी मिलता है कि हमको सबसे पहले अपने को मजबूत करना पड़ेगा। आज का युवा केवल डांस जयंती मनाने तक सीखते, बड़े बड़े बैनर में उनके फोटो आते हैं, लेकिन बताइए साहब हम लोग अपना स्वयं का निर्माण क्या करें? शिवाजी इसलिए जाने जाते कि उन्होंने सबसे पहले खुद का निर्माण किया, खुद का निर्माण करके फिर समाज हित में काम किए, तो आज का युवा वर्ग सबसे पहले अपने लक्ष्य को लेकर चले, अपने हितों की रक्षा करें, फिर समाज हित के लिए सामने आए, तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ी भूमिका होगी। केवल दाढ़ी रखने से और बाल करने से शिवाजी जैसे, शिवाजी को केवल बाहर से नहीं देखना, हमको शिवाजी को अपने अंतर मन में उतारना है। और जब युवा शिवाजी को सही में पढ़ेगा, सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है, जब आप पढ़ लोगे और पढ़ाई के माध्यम से सही मायने में शिवाजी को हम लोग ला सकते हैं, केवल दाढ़ी रखने से, डांस करने से, जयंती मनाने से, जयंती ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनको आंतरिक रूप से जानना समझना होगा, उसके लिए हमको अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा अध्ययन नहीं करता है और अनर्गल बातों में आके फिर जाने किस तरह के षड्यंत्रों का शिकार होते जा रहा है, ये बहुत बड़ी दुविधा है साहब आज।
जी सर, तो ये थे मधुकर जी गायकवाड़, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर शिवाजी महाराज जी की जयंती साथ ही उनसे जुड़े कई तथ्यों को मोबाइल वाणी के माध्यम से साझा किया। मधुकर सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी सर, धन्यवाद धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वालन सबका दोस्त योगेश।